한탄.
예, 아카시마니 해. प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत भूटान के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 दिन की भूटान यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज जी। संजय जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी समाचार में।
नमस्कार।
सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और भूटान के जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक और बहुत मजबूत जाने जाते हैं। बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें इन देशों के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में।
देखिए, भारत और भूटान के अगर हम संबंध देखते हैं तो हमारे जो रिलेशंस हैं दोनों के सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं और भारत का और भूटान का एक तरीके से जो सभ्यता का और कल्चरल जो जुड़ाव है वो बहुत स्ट्रांग है, यूनिक है। वो किसी और देश के साथ में इस तरीके के जुड़ाव नहीं है, चाहे वो भाषा के संदर्भ में हो, चाहे वो संस्कृति के संदर्भ में हो, चाहे वो धर्म के संदर्भ में हो। वहां पर जो द्रुक्पा कल्चर है या आप ये कहिए कि जो बुद्धिस्ट का महायान जो स्ट्रीम है, निश्चित रूप से उसकी रूट्स अगर हम देखते हैं तो वो भारत में देखने को मिलती है। भारत के लिए भूटान जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली एक महत्वपूर्ण कंट्री है। भारत ने और भूटान ने 1949 में एक पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी किया और उस पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के माध्यम से हम बहुत ही सकारात्मक रूप से दोनों की विदेश नीति को समझते हैं, दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को समझते हैं, दोनों की सिक्योरिटी इश्यूज को समझते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमने देखा जब प्रधानमंत्री वहां अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब उनकी पहली विदेश यात्रा भूटान की ही रही थी, तो कैसे प्रधानमंत्री की ये यात्रा इस समय बहुत खास है?
इसमें 2-3 पहलू है। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो विशेष एक महत्व रहा है वो पड़ोसियों के प्रति रहा है और उसी संदर्भ में भारत के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2014 में तो हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हमने जो स्मॉल स्टेट्स हैं जो भारत के साथ एक घनिष्ठ जिनका संबंध है, जिनके यूनिक रिलेशन है, उनको हमने एक प्रायोरिटी में रखा। पहली जो भारत के प्रधानमंत्री की कोई विदेश यात्रा हुई वो भूटान हुई, उसके बाद से ये 4थी यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहली बात तो जो खेसर वांगचुंग के पिता है उनका 70वां जन्मदिन मनाया जाता है, किंग जिंगमे सिंगवे वांगचुक, और साथ ही साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिपरा रेलिक्स है जो लॉर्ड बुद्धा की मेमोरीज को समर्पित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर जो ग्लोबल पीस फेस्टिवल हो रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बुद्धा की लैंड है, बुद्धा को वहां पे बहुत ही सम्मान से मनाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए, जब भारत एक तरीके के वॉयलेंट टेररिस्ट हीनियस क्राइम को फेस कर रहा है तो एक मैसेज दुनिया को जा रहा है कि भारत एक नॉन वॉयलेंस और पीस को आगे बढ़ाने वाला देश है और इसीलिए उसी सम्मान में हमने वहां पर किंग जिंगमे सिंगमे वांगचुक उनके बर्थडे में पार्टिसिपेट किया और ग्लोबल पीस फेस्टिवल में भागीदारी की। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे इस बात का आह्वान किया कि हम दुनिया में पीस चाहते हैं, हम किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जो उनके डेवलपमेंटल प्लान है 2024 से 2029 उसमें भारत ने 10,000 करोड़ का डेवलपमेंटल एड दिया है इस प्लान के लिए ताकि भूटान का जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। दूसरा जो पक्ष आता है वहां का जो एनर्जी ट्रेड है और एनर्जी कोऑपरेशन है वो भारत का भूटान के साथ बहुत गहरा है। भारत ने 4 जो एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है उसमें भारत का योगदान है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए उसमें एक नया प्लांट जो 1020 मेगावाट का है पुनात सांगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, उससे भी भारत की तरफ एनर्जी ट्रेड होगा। और इस एनर्जी ट्रेड से जो सबसे बड़ा भूटान की इकोनॉमी में जो इजाफा होता है कि लगभग 40% वहां के जो नेशनल रेवेन्यूज में एनर्जी ट्रेड से योगदान होता है और ये लगभग 25% उनकी GDP का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से भारत की जो एक पहल है, भारत का जो भूटान के साथ एक जुड़ाव है वो न केवल सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, साथ ही साथ आर्थिक आर्थिक मुद्दों पे भी, विकास के मुद्दों पे भी भारत उनके साथ में स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है।
आपने बात की ऊर्जा साझेदारी की दोनों देशों के बीच में, तो प्रधानमंत्री ने जब आज संबोधन दिया वहां पर तो उन्होंने कहा कि भूटान और भारत की ऊर्जा साझेदारी दोनों देशों के विकास को और गति दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भूटान के चौथे राजा के नेतृत्व में रखी गई थी और अब ये साझेदारी लगातार नए शिखर छू रही है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस पर, आइए सुनते हैं।
आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के नेतृत्व में रखी गई थी। हिज मैजेस्टी फोर्थ किंग और हिज मैजेस्टी फिफ्थ किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। आपके इसी विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है।
प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है आज वहां। उन्होंने कहा कि गिलेफू के पास भूटान में एक इमिग्रेशन चेक प्वाइंट स्थापित किया जाएगा जिससे आने जाने वाले लोगों के दोनों देशों के बीच और निवेशकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। एक तरह से हम कहें तो भारत और भूटान के जो आर्थिक संबंधों के बारे में आप बात कर रहे थे, इस तरह के जो और दोनों देशों के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं तो उसमें भी एक ये मील का पत्थर साबित होगा।
देखो निश्चित रूप से जो भारत भूटान के साथ में एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी को बरकरार रखते हैं। भारत ने जो असम का कोकराझार से गेलपू को एक रेलवे लिंक्स, जो गेलपू है सदर्न भूटान का एक पार्ट है, लगभग 69 किलोमीटर का एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भारत ने वहां पे प्लान करके आगे काम उस पर शुरू कर दिया। इसमें भारत लगभग 3456 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। तो इससे भूटान का जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ एक तरीके से फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा जो एक और बड़ा प्रोजेक्ट भारत वहां पे लेके आ रहा है वो बेनारहाट समस्ते रेलवे लाइन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो वेस्ट बंगाल से साउथ वेस्टर्न भूटान को जोड़ता है। भारत ने शिलोंग सिलचर का जो एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किया है वो भूटान को पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी कनेक्ट करेगा। ये सब बुद्धिस्ट कंट्रीज है, इनका भी एक सीधा सीधा कनेक्शन भूटान के साथ में स्थापित होगा। और ये जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव आ रहे हैं क्योंकि भूटान एक तरीके से बफर स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट।
मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि भारत के सामरिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए भूटान कितना महत्वपूर्ण देश हो जाता है।
भारत के सीधे सीधे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं खासकर भूटान के संदर्भ में। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें तीन थ्रेट आती है, एक आतंकवाद, दूसरा जो रिलीजियस फंडामेंटल, जो तीसरा इंसर्जेंसी। 2002 में जिस तरीके के ऑपरेशन क्लीन का एक आगाज किया भारत ने उसमें भूटान ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थे, उल्फा था, बाकी जो ग्रुप्स थे, उनको वहां से खदेड़ने में सक्रिय भूमिका भूटान ने निभाई। तो भूटान सिक्योरिटी का एक बहुत स्ट्रांग हमारा पार्टनर है। दूसरा जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव भूटान या बाकी देशों में नहीं आए ताकि जो डायरेक्ट भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट हो। भारत का जो ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये नहीं कि हम अपना ही डेवलपमेंट करें। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास, इसका जो दायरा है वो पूरे पड़ोसी देश है कि हमारा भी विकास होगा और पड़ोसी देशों का विकास होगा। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे जिससे कि पड़ोसी देशों का, भूटान का, नेपाल का, इन सब देशों का भी विकास हो। तो हम आर्थिक विकास की तरफ भी, डेवलपमेंटल टाइप और पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और तीसरा जो है, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पड़ोसी देशों में रहे। हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और सबसे बड़ी बात, जिनमें खेसर वांगचुक है जो अभी राजा है भूटान के, उन्होंने 2008 में अपने आप ही डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस वहां शुरू हो गया। तो एकमात्र ये उदाहरण है कि मोनार्की ने अपने आप इनिशिएटिव लेके वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना शुरू किया और जनता की आवाज को वहां पे तवज्जो देना शुरू किया। इन्हीं वजह से भारत और भूटान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉमन है और यही है कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स के इन्फ्लुएंस को दूर रखता है।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि भारत और भूटान केवल सीमाओं से नहीं जुड़े हैं बल्कि वे संस्कृतियों से भी सदियों से जुड़े रहे हैं। दोनों देशों का रिश्ता मूल्यों, भावनाओं, शांति और प्रगति का है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आपने हमें इन दोनों देशों के रिश्तों के बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा को कवर कर रही प्रसार भारती की विशेष संवाददाता श्वेता सिंह ने भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्य से बातचीत की और दोनों देशों के संबंधों और प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में उनसे जाना। आइए सुनते हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 नवंबर तक भूटान के दौरे पर हैं। यह यात्रा नियमित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा में है और भारत भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करती है। हमारे साथ भूटान में भारत के राजदूत श्री संदीप आर्या हैं, जो भारत भूटान संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे। सर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। सर, भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगमे वांगचुक की 17वीं जयंती को समर्पित समारोह में भाग लिया है। प्रधानमंत्री की यात्रा थिम्पू में चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी के साथ मेल खाती है। हमारे श्रोताओं के साथ भारत और भूटान के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत और दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे।
भूटान भारत का सबसे नजदीकी दोस्त है, हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में। तब से कुल मिला के पिछले 50-57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। इसी साल किंग ऑफ भूटान हिज मैजेस्टी दो बार भारत गए हैं, उनके प्रधानमंत्री दो बार भारत आए हैं। एक्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ एक्सचेंज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके कारण समय समय पे दोनों देशों के नेताओं को आपस में बातचीत करके रिश्तों के अलग अलग पहलुओं के बीच में बातचीत का मौका मिलता है। उनको आगे बढ़ाने के बारे में एक दूसरे की राय स्थापित होती है और उनके जो फैसले लिए जाते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अलग अलग एरियाज में रिलेशंस आगे बढ़ते हैं, चाहे ट्रेड या व्यापार हो, चाहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो और अदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन हो, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है और कल्चरल सिविलाइजेशन। इस समय भूटान में ये बहुत विशेष अवसर है। लोग बोलते हैं पहली बार अपने इतिहास में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बहुत विदेश से भी आए हुए हैं, यहाँ के भी लोग हैं और ग्लोबल पीस के लिए प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं, रिचुअल्स किए जा रहे हैं। तो वो फेस्टिवल चल रहा है अभी। भूटान के चौथे राजा थे, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। चौथे राजा हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत और भूटान के रिश्तों में। उन्होंने 34 साल तक तकरीबन 1972 से 2006 तक लोगों के यहाँ के राजा थे। समय पे बहुत बहुत अलग अलग चीजें हुई हैं दोनों देशों के बीच में। भगवान बुद्ध के शरीर धातु यहाँ पे लाए गए हैं विशेषकर तकरीबन 10 दिन के लिए, उनको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। चीजें कुल मिला के कई सारी चीजें हो रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 1020 मेगावाट पुनान सांगचू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ऊर्जा क्षेत्र की गतिशीलता भारत और भूटान के बीच में सहयोग को कैसे आगे बढ़ा रही है?
पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है भूटान के नजरिए से। एनर्जी का वो एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले साल तकरीबन 1900 करोड़ रुपए की बिजली उन्होंने भारत ने उनसे खरीदी थी। तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए स्किल्स टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके लिए फाइनेंसिस भी चाहिए। तो उस नजरिए से बहुत अच्छी चीज है कि भारत और भूटान साथ आए हैं। दोनों ने मिलकर अभी तक तकरीबन 3200 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स, ये पांचवा पावर प्लांट है। तो भूटान के लिए अच्छा है क्योंकि उनका जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। भारत के नजरिए से हमको बिजली मिलेगी जो भारत आयात करते हैं उनकी तरफ से, विशेषकर गर्मियों के महीनों में जब भारत में बिजली की थोड़ी कमी होती है उस समय यहाँ पे सरप्लस पावर होती है। तो एक तरह से भूटान के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। दोनों देशों को एक तरह से सिनर्जी या कॉम्प्लीमेंटैरिटी बोल सकते हैं कि सरप्लस पावर और पावर डेफिसिट नीड्स एक दूसरे की पूरी होती है। जब भूटान सर्दियों के महीने में यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कम होता है तो वो लोग भारत से बिजली भी आयात करते हैं। तो एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें की काइंड ऑफ हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं और उनको आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। आप कनेक्टिविटी का जिक्र कर रहे थे, कनेक्टिविटी के कई सारे पहलू हैं हम लोगों के। जैसे 80% ट्रेड आयात निर्यात भूटान का भारत को जाता है और बाकी जो तीसरे देशों को भी जाता है वो भी भारत के थ्रू जाता है। तो उस तरह से हम लोग बॉर्डर लैंड बॉर्डर में ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लोगों के आने जाने को स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में भी कई सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं।
सर, आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार के लिए थिम्पू।
अभी आप सुन रहे थे भारत भूटान के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।